لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایرانی سفارت خانے کا قریب دھماکہ، 23 جاں بحق، 150 زخمی۔ ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات، ایرانی ٹیم وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی قیادت میں جنیوا روانہ ہو گئی۔ کابل میں لویا جرگہ کے لیے سیکیورٹی انتظامات، تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اتوار تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android اور urdu.sahtv.ir/live۔ اور اب آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 2 بم دھماکوں میں تقریباً 2 درجن افراد شہید اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے قریب ہونے والے 2 طاقتور بم دھماکوں کے نتیجے میں کم سے کم 23 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ان دھماکوں میں آس پاس کھڑی 10 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ ان دھماکوں میں جو غالباً کار بم کے تھے، ایرانی سفارت خانے کے کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ آس پاس کی 6 عمارتوں کو بھی دھماکوں سے نقصان پہنچا ہے۔ لبنان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر غضنفر رکن آبادی نے ان دھماکوں کا ذمہ دار صہیونی حکومت کو بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دھماکوں نے ایران کے موقف کی حقانیت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ ایران تحریک مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گا۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ان دھماکوں میں ایران کے ثقافتی اتاشی ابراہیم انصاری بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ جنیوا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔
جنیوا میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان تیسرے دور کے مذاکرات بدھ کو ہوں گے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے ایران کی ٹیم وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی قیادت میں منگل کو روانہ ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان سمجھوتے کے بارے میں کہا ہے کہ سمجھوتے کا متن مشترکہ اہداف اور ابتدائی اور آخری اقدامات پر مبنی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اہداف اور آخری مرحلے پر اتفاق رائے کے بغیر صرف پہلے مرحلے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان دوسرے دور کے مذاکرات 7 نومبر سے 9 نومبر تک جنیوا میں ہوئے تھے۔ مذاکرات ماہرین اور معاونین کی سطح پر شروع ہوئے تھے، اور اہم پیش رفت کے بعد متعلقہ ملکوں کے وزراء خارجہ بھی جنیوا پہنچ کے مذاکرات میں شریک ہو گئے۔ ان مذاکرات میں ایران اور 5+1 معاہدے کے کافی قریب پہنچ چکے تھے، لیکن آخری لمحات میں فرانس کی وجہ سے سمجھوتا نہ ہو سکا اور طے پایا کہ 20 نومبر کو جنیوا میں سمجھوتے کے متن کے بارے میں مذاکرات ہوں گے۔ تیسرے دور کے مذاکرات کا وقت نزدیک آنے پر فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ تل ابیب گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے فرانسوا اولینڈ سے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کی مخالفت جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ فرانس کے صدر نے اتوار کو ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان سمجھوتے کے لیے صراحت کے ساتھ 4 شرائط پیش کی ہیں۔ ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایران کی تمام ایٹمی تنصیبات بین الاقوامی نگرانی میں ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایران یورینیم کی 20% افزودگی بند کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں کمی کرے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ ایران کی عراق کی بھاری پانی کی ایٹمی تنصیبات بند کی جائیں۔ اگرچہ یہ مطالبات نئے نہیں ہیں، لیکن موجودہ حالات میں فرانس کے صدر نے ان کا اعادہ کر کے صہیونی حکومت کے ترجمان کا کردار ادا کیا ہے، اور اس کا مقصد ایران پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر کے بیان سے پہلے ہی ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف 12 واضح کر چکے ہیں کہ ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی ایران کا مسلمہ حق ہے اور اس بارے میں کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری طرف یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ محترمہ کیتھرین ایشٹن نے، جو ایٹمی مذاکرات میں گروپ 5+1 کی ٹیم کی قیادت کرتی ہیں، برسلز میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ہمارا مقصد اعتماد سازی تک پہنچنا ہے۔ उन्होंने कहा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के पुरमन होने के पेश नज़र गुज़िश्ता 3 साल में हमने इस हदफ तक पहुंचने की कोशिश की है। रूस के ऐवान सदर क्रिमलिन हाउस ने भी पीर की शाम ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से सदर व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनी गुफ्तगू के बाद ऐलान किया है कि इस दरीना और पुराने मसले के हल की राह तक पहुंचने का इम्कान इस वक्त सबसे ज्यादा मौजूद है। उधर अमरीका में हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों पार्टियों के इंतहा पसंद धड़े ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है, लेकिन अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि वह मंगल को सेनेट की इन्फॉर्मेशन, दिफा, खारजा रवाबित और बैंकारी से मुतालिक कमेटियों में सीनियर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अराकीन से मुलाकात में उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाने से गुरेज करें ताकि एटमी मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल की जा सके। बहरहाल जैसा कि ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा है कि ईरान और ग्रुप 5+1 के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इन हालात में अगर बाज़ फरीकों ने ज्यादा मुतालबात पेश किए तो किसी ऐसे समझौते का हुसूल मुश्किल हो जाएगा जिसमें किसी की भी हार न हो बल्कि सबकी जीत हो। बहरहाल बुध को जेनेवा में ईरान और ग्रुप 5+1 के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और बाज़ फरीकों की जानिब से रुकावटें डालने की कोशिशों के बावजूद फजा काफी साजगार है, लेकिन किसी काबिल कबूल नतीजे का हुसूल फरीक मुकाबिल की कारकर्दगी और खुलूस नीयत पर मुनहसर है।
इस्लामी जमहूरी ईरान ने कहा है कि तेहरान के खिलाफ किसी भी तरह की नई पाबंदियां मुज़ाकरात के अमल को कमज़ोर और किसी समझौते के हुसूल के इम्कान को ख़त्म कर सकती है।
वज़ारत खारजा की तर्जुमान मर्जिया अफ़ख़म ने हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में ईरान और 5+1 ग्रुप के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर न पहुंचने की सूरत में तेहरान के खिलाफ नई पाबंदियों के बारे में कहा कि अब तक की खबरों से ये बात साफ हो गई है कि मुज़ाकरात का नतीजा निकला है, जबकि पाबंदियों में शिद्दत लाने का इकदाम मुज़ाकरात के मुस्बत अमल को कमज़ोर कर देगा। वज़ारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात का रास्ता हकीकत पसंदी और नेक ख्वाहिशात के साथ शुरू किया है। उन्होंने कहा कि तेहरान अपने सियासी अज़्मो इरादे और नेक नियती की बुनियाद पर यह तवक्को करता है कि इन मुज़ाकरात में फरीक मुकाबिल की तशवीश को भी दूर किया जाएगा और ईरान की भी तशवीश बरतरफ की जाएगी और ईरानी अवाम के हकूक को तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान पर आयद पाबंदियों को ख़त्म किया जाएगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की मुज़ाकराती टीम मिल्लत ईरान के मुसलम हकूक के हुसूल की पूरी कोशिश कर रही है और फरीक मुकाबिल को भी चाहिए कि वह ईरानी अवाम के हकूक का पूरा पूरा एहतराम करे। तर्जुमान वजारत खारजा ने ईरान की पुरमन एटमी सरगर्मियों के बारे में IAEA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट को गुज़िश्ता रिपोर्टों के मुकाबले में मुतवाजन करार दिया, ताहम यह भी कहा कि यह बात कि ईरान ने अपनी एटमी सरगर्मियों को रोक दिया है सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान की एटमी सरगर्मियों में न तो कोई कमी वाकई हुई है और न ही कोई वक्फा ईजाद हुआ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि ईरान की एटमी सरगर्मियां अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जारी हैं।
ईरान के तलबा और असातिज़ा ने ईरान के शहर कुम के करीब फोर्दो एटमी तंसीबात के अतराफ में इंसानी जंजीर तश्कील दी है। तेहरान के शरीफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी और तेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा ने मंगल को फोर्दो में एटमी तंसीबात के अतराफ में एक इंसानी जंजीर तश्कील देकर ईरान की पुरअम एटमी सरगर्मियों के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। एटमी तरक्याती प्रोग्रामों से मुतालिक तलबा कमेटी के सेक्रेटरी मेहदी ज़ियान लू ने फ्रांस न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू के दौरान बताया कि फोर्दो में इंसानी जंजीर तश्कील देने वाले तलबा और असातिज़ा से ईरान के एटमी इदारे के सरबरा अली अकबर सालेही ने खिताब किया। तलबा कमेटी के सेक्रेटरी मेहदी ज़ियान लू ने कहा है कि अली अकबर सालेही ने इस इज्तिमा में मौजूद इस बात की निशानदेही करती है कि एटमी मैदानों में हासिल होने वाली कामयाबियों की हिफाजत पूरी कौम की ख्वाहिश है और ईरानी आवाम के साथ ईरानी हुक्काम भी इन कामयाबियों और समरात का तहफ्फुज़ करने में पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरात में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डायरेक्टर सैयद शब्बीर हुसैन शाह को शहीद कर दिया है। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने गुजरात यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सैयद शब्बीर हुसैन शाह पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। इस हमले में उनके साथ उनका ड्राइवर भी मारा गया है। सैयद शब्बीर हुसैन शाह की दहशतगर्दाना हमले में शहादत के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के तलबा ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया और सड़कों को बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि गुजरात में जलालपुर रोड पर दहशतगर्दों ने पहले शब्बीर हुसैन शाह की कार को रोका, फिर उन्हें और उनके ड्राइवर को कार से बाहर निकालकर उन पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्द अनासिर हमला करके फरार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान के शहर गुजरात की यूनिवर्सिटी के शोबे ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने बताया है कि शब्बीर हुसैन को काफ़ी अरसे से धमकियां मिल रही थीं। उनका कहना था कि कई बार ज़िली इंतज़ामिया को इसकी इत्तला भी दी गई, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी माहदे का जायज़ा लेने के लिए काबुल में लोया जरगा के इनेकाद से कबल ही आइंदा इतवार तक दारुलहकूमत में सरकारी और गैर सरकारी दफातर में तातील का ऐलान कर दिया गया है। काबुल से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि अफगानिस्तान की हुकूमती काबीना ने कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी दफातर में तातील का ऐलान इसलिए किया गया है कि शहरियों की रफ्त आमद में आसानियां पैदा की जाएं और लोया जरगा की सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी तदाबीर के तहत सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के अहलकार काबुल शहर के हसास मकामात पर तैनात हो गए हैं और पूरे शहर में सिक्योरिटी गश्त का सिलसिला जारी है। काबुल में सिक्योरिटी के इंतजाम में एक ऐसे वक्त शिद्दत लाई गई है जब गुज़िश्ता शनिचर को लोया जरगा के मकाम के करीब कार बम धमाके में दसियों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए थे। अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी माहदे पर गौर करने के लिए लोया जरगा का इजलास जुमेरात को काबुल में शुरू हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जमातों और कबाइल के 2500 रहनुमा और अकाबरीन शिरकत करेंगे। इस इजलास के अहम मौजूआत में अमरीकी फ़ौजियों को अदालती इस्तिस्ना देना और अफगान शहरियों के घरों में अमरीकी फ़ौजियों की खुद सराना तलाशी और रिहायशी इलाकों पर उनके हमले जैसे मसाइल शामिल होंगे। शाम के आवाम ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौज के ऑपरेशन की हिमायत में रैलियां निकाली हैं। यह ऐसी हालत में है कि मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन में दहशतगर्द गुरोहों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
प्रेस टीवी के मुताबिक दारुलहकूमत दमिश्क के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद ने रैली निकालकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौज की कार्रवाई की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। रैली में शरीक लोग अपने हाथों में शाम का परचम उठाए हुए थे और फौजी कार्रवाइयों की हिमायत में नारे लगा रहे थे। रैली में शरीक शामी बाशिंदों ने रिहायशी इलाकों पर दहशतगर्दों के मार्टर हमलों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। यह ऐसी हालत में है कि दमिश्क के मजाफाती इलाके बैत सहम में शामी फौज ने दहशतगर्दों पर कारी जर्ब लगाई है और इस इलाके को दहशतगर्दों से मुकम्मल आज़ाद करा लिया है। शाम में सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दमिश्क के एक और नवाही इलाके कारा में भी शामी फौज की पेशकदमी जारी है और कारा के अतराफ की पहाड़ियों पर शामी फौज ने अपना कब्जा कर लिया है। दूसरी जानी भरस्ता में भी शामी फौज की पेशकदमी जारी है और फौजियों ने दहशतगर्दों के बहुत से ठिकानों को उनसे वापस ले लिया है। इन कार्रवाइयों के दौरान शामी फौज को भारी मकदार में असलाह और गोला बारूद भी हाथ लगा है। इस दरमियान होम से भी इत्तलात हैं कि शामी फौज ने फरीतैन के इतराफ के खेतों को दहशतगर्दों के कब्जे से आज़ाद करा लिया है, जबकि शिमाली शहर हलब के मजाफात में दो दैरीन नामी गांव पर भी फौज ने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। हलब में सरगम दहशतगर्द गुरोहों ने भी लश्कर तौहीद नामी दहशतगर्द गुरोह के सरगना अब्दुल कादिर साले के हलाक हो जाने का एतराफ किया है। शाम के जनूबी सूबे दरा में भी फौज ने बहुत से दहशतगर्दों को हलाक किया है, जिनमें काफ़ी तादाद में गैर मुल्की दहशतगर्द शामिल हैं। सरकारी फौज ने इसी तरह दराज शहर के अतराफ में वाक़ अतमान नवी नासिरिया हैरान गदीर बुस्तान और अबुल कतफ में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों पर हमले करके इन इलाकों को उनसे आज़ाद करा लिया और भारी मकदार में असलाह और गोला बारूद जब्त किया है। इदलिब शहर के मजाफात में भी शामी फौज ने अरबईन नामी एक स्ट्रेटेजिक पहाड़ी पर कब्जे की दहशतगर्दों की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। फौज ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। इदलिब के ही अन्नोमान और कफर लाता नामी इलाकों में भी दहशतगर्दों को भारी शिकस्त का सामना है।
लीबिया के शहर त्राबलस में खूनरेज झड़पों के बाद फौजी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को शहर भर में तैनात कर दिया गया है। त्राबलस में सरकारी ज़राए ने बताया है कि फ़ौज के कई यूनिटों को शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया गया है और उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए अहम शाहराहों और चौराहों पर पोजीशन संभाल ली है। خبروں کے مطابق شہر کے ساحلی علاقے میں واقع فوجی چھاونی سے فوجیوں کو بکتر بند گاڑیوں میں سوار ہو کے ترابلس میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ فوجی جوان وکٹری کا نشان دکھا رہے تھے اور مسلسل ہارن بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حکومت کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزارت دفاع کے فیصلے کے تحت شہر میں فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس بیان میں ترابلس کے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ دوسری جانب مصراتہ شہر کی لوکل کونسل نے کہا ہے کہ شہر میں موجود تمام مسلح گروہ 72 گھنٹے کے اندر شہر سے باہر نکل جائیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعے کے روز دارالحکومت ترابلس میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف ہونے والے پرام مظاہرے پر بعض مسلح عناصر نے فائرنگ کر دی تھی، جس میں 40 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ اکتوبر 2011 میں قذافی کی عملیت کے خاتمے کے بعد سے لیبیا میں ہونے والا یہ سب سے خونین واقعہ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہائٹی کے دارالحکومت میں مظاہرے کر کے صدر میشل مارٹیلی کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مارٹیلی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے حکومت کے خلاف ہونے والا یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ مظاہرین صدر مارٹیلی کے استعفے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہائٹی کے دوسرے بڑے شہر میں بھی ایسے ہی مظاہرے کیے گئے ہیں، جہاں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ مظاہرین نے ملک میں غذائی اشیاء کی قلت پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں خالی پلیٹیں اور چمچے اٹھا رکھے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس کے حملے میں 6 مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں، من جملہ ریاض میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں 14 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور اسی طرح ملک کے 4 شمالی، مغربی اور جنوبی علاقوں میں آنے والے سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے، جبکہ 8 افراد لاپتہ ہیں۔ شدید بارش اور سیلاب سے ریاض میں مسلسل دوسرے دن بھی اسکول بند رہے۔ الشرقیہ اور اسی طرح حفر الباطن، اللیس اور حائل نامی علاقوں میں بھی شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سول ڈیفنس کے ادارے نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں مدد کے لیے 7000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اس محکمے کی کارکردگی پر عوام نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ مہینے بھی سعودی عرب میں سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں کم سے کم 20 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ سعودی عرب میں تیل کی دولت کی فراوانی کے باوجود شہریوں کی سیکیورٹی کا مناسب بندوبست نہیں ہے، کیونکہ تیل کی دولت کا زیادہ حصہ سعودی شہزادوں کے عیش و عشرت میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کی سیاسی اور شہری حقوق کی انجمن نے کہا ہے کہ سیلاب میں عام شہریوں کے جانی نقصانات نے آل سعود خاندان کی بدعنوانیوں اور نااہلیوں کو پہلے سے بھی زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے ارکان نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ فیڈرل حکومت کے دفاتر دوبارہ بند کر دیے جائیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق ریپبلکن ممبران نے اپنے ایک خط میں خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے آئندہ 2 دسمبر تک عبوری بجٹ کی منظوری نہ دی تو امریکہ میں ایک بار پھر شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں بجٹ کمیٹی میں ریپبلکن ارکان نے اسی طرح بجٹ معاملے پر مذاکرات کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ 2 سال کے اخراجات کی سطح کے بارے میں جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اس خط میں جو امریکی ایوان نمائندگان میں بجٹ سربراہ پال رایان اور اسی طرح امریکی سینٹ میں بجٹ کمیٹی کے چیئرمین پیٹی مورائے کے نام لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ اگر مقررہ مدت میں بجٹ کے بارے میں کسی اتفاق رائے تک نہ پہنچا گیا تو امریکہ میں ایک پھر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے مطابق سن 2014 میں سرکاری اخراجات میں 91 ارب ڈالر کم کیا جانا ہے۔ اس سلسلے میں ایوان نمائندگان اور سینٹ میں بجٹ کمیٹیوں کے سربراہوں نے اپنے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے لاطینی امریکہ کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں 200 سال سے جاری پالیسی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ जॉन कैरी ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल से जारी मॉनरोए पॉलिसी ख़त्म की जा रही है जो 1830 से चली आ रही है। लातिनी अमेरिका के मुल्कों के बारे में ये पॉलिसी उस वक्त के अमरीकी सदर जेम्स मॉनरोए ने तैयार की थी। इस पॉलिसी के तहत किसी भी यूरोपीय मुल्क की जानिब से शिमाली या जनूबी अमरीका में अपनी कॉलोनी के क़याम की कोशिशों को जारहाना इकदाम करार दिया गया था और इसके तहत हुकूमत अमरीका को मुदाखलत का हक़ हासिल था। जॉन कैरी ने वाज़ किया कि मॉनरोए पॉलिसी लातिनी अमरीका के मुल्कों में दूसरे मुल्कों की असर रसूख में इजाफे की मुखालफत पर उस्तवार थी और अमरीका के तमाम कामयाब सदूर ने इस पॉलिसी पर अमल किया है। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत इस पॉलिसी में तब्दीली का इरादा रखती है और इसके तहत तमाम मुल्कों को सिक्योरिटी मामलात में मुसावी हुकूक हासिल होंगे। जॉन कैरी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्होंने रवां साल के आगाज़ में अमरीकी ऐवान नुमाइंदेगान से ख़िताब करते हुए कहा था कि लातिनी अमरीका हमारा कॉरिडोर है और इसमें किसी को नफूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जॉन कैरी के इस बयान पर लातिनी अमरीका के मुल्कों से सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। एशिया की मंडियों में तेल की कीमतों में कमी आई है। मंगल की सुबह एशियाई तेल की मंडियों में हर बैरल खाम तेल की कीमत $92.90 हो गई है और इस तरह हर बैरल खाम तेल की कीमत में 13 सेंट की कमी वाक़ हुई है, जबकि आइंदा जनवरी में सप्लाई के लिए ब्रेंट तेल की कीमत में 47 सेंट कमी आई है और हर बैरल ब्रेंट खाम तेल $108 में मामला हुआ। सिंगापुर में IG मार्केट के तजिया निगार कैली थियो का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद हुई है जिसमें उसने कहा है कि वो आइंदा 2 महीने के दौरान तेल की पैदावार में कमी नहीं करेगा। ये ऐसी हालत में है कि इन मुल्कों में जो OPEC के रुकन नहीं हैं आइंदा साल तेल की पैदावार में रोज़ाना 7 लाख बैरल इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जोवीनामी तेल के आदाद शुमार के इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में सितंबर में रोज़ाना 7,08,40,000 बैरल तेल निकाला गया है जो गुज़िश्ता 8 साल में सबसे ज़्यादा है। और नाज़रीन आखिर में एक बार फिर आज की अहम तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में ईरानी सफारत खाने के करीब धमाका 23 जां बहक 150 जख्मी। ईरान और ग्रुप 5 + 1 के मुजाकरात एटमी टीम वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ की क्यादत में जेनेवा रवाना हो गई। काबुल में लोया जरगा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे इतवार तक के लिए बंद कर दिए गए। नाज़रीन यहीं आशा खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखना ना भूलिए, पता है urdu.sahtv.ir। इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।